कुकुलानंद जी एवं मित्रों, विवेकानंद केंद्र और भीलवाड़ा संस्कृति प्रकाशन के सम्मिलित तत्वावधान में यह जो त्रिदिवसीय व्याख्यान माला आयोजित हुई है, उसके अंतर्गत हम लोग एकत्र हुए हैं। ये दोनों संस्थाएं सम्मिलित रूप से कुछ पिछले वर्षों से इस प्रकार का आयोजन करती आ रही हैं और इस आयोजन के माध्यम से मुझे यह अवसर प्राप्त होता है कि आप लोगों से मिल सकूं और अपने कुछ विचार, जो विषय तय किए हुए हैं, उन पर आपके समक्ष प्रकट कर सकूं। इस समय 3 दिनों के लिए जो विषय निर्धारित हुआ है वह सुन ही लिया है आपने, भाई लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला जी के द्वारा। एक बार फिर से उस विषय को दोहरा दे रहा हूं और वह है उपनिषदों का जीवन दर्शन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उपनिषदों ने कोई एक जीवन दर्शन हमारे समक्ष रखा है। झुंझुनवाला जी कह रहे थे कि जीते तो हम सभी हैं, परंतु जीवन के पीछे कोई दर्शन होना चाहिए, इसका विचार हम सभी के मन में पैदा नहीं होता है। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या जीने का भी कोई दर्शन होता है? जैसा मनुष्य जीता है, क्या उसी प्रकार जीने से काम नहीं बनता है? यह विचार मनुष्य को कभी कभी मथता है, जिसके अंतःकरण में ऐसा विचार उठता है उसी को हम मनुष्य कहते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य वह है जो मनन करने में समर्थ है। पशु मनन नहीं कर पाता। पशु और मनुष्य का अंतर यहीं पर साधित होता है। पशु के मन में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, उसका जीवन सहज प्रेरणा पर आधारित होता है, जिसे हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्टिव कहते हैं। मनुष्य के जीवन में भले ही इंस्टिंक्ट्स का, भले ही सहज प्रेरणा का एक अच्छा भाग हो, परंतु मात्र इंस्टिंक्ट पर मनुष्य जीता नहीं है। वह चिंतन करता है, मनन करता है, प्रश्न करता है और इसी प्रश्न के माध्यम से मनुष्य के जीवन में अग्रगति होती है और यह चिंतन और मनन ही मनुष्य को पशु से पृथक कर देता है। प्रश्न यदि मैं आपसे करूं कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, तो आप संभावित उत्तर क्या दे सकेंगे? शायद यह कहेंगे कि पशु में ज्ञान नहीं होता, जबकि मनुष्य में ज्ञान होता है। या आप यह भी कहेंगे कि पशु नहीं जानता, जबकि मनुष्य जानता है। पर थोड़ी गहराई में उतरें तो क्या यह सत्य है? क्या पशु भी नहीं जानता जैसा कि मनुष्य जानता है? क्या पशु के ज्ञान नहीं होता जैसे मनुष्य के ज्ञान होता है? तो हम देखेंगे कि पशु जिस प्रकार से मनुष्य जानता है वैसी जानकारी उसके भी मन में है, ज्ञान तो उसे भी होता है। दोनों के ज्ञान में अंतर क्या है? यह एक बड़ा प्रश्न है जिसको सुलझाने के लिए मनीषियों ने प्रयास किया है। एक मनीषी हो गए पियरे टेलार डी शार्डन, CHARDIN। अब CHARDIN को आप किसी भी प्रकार से उच्चारित करें, कोई कार्डिन कहें, कोई कार्डा कहें, कोई शार्डा कहें, तो मैंने उच्चारण सुना था शार्डा। ये फ्रेंच लेखक बहुत गुणी, इनकी बहुत सी किताबें, इनकी एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई, द फिनोमेनॉन ऑफ मैन। और उस पुस्तक में वे यह जानने की चेष्टा करते हैं कि मनुष्य पशु से किस बात में पृथक है, मनुष्य की विशेषता क्या है जो विशेषता उसे पशु से भिन्न कर देती है। ये जो शार्डा थे इनमें कई विपरीत गुणों का मेल हुआ था। वैसे वे पादरी थे, पैलेंटोलॉजिस्ट थे, सर्जन थे, तो आप समझ सकते हैं कई ऐसे विपरीत गुणों का मेल उनमें हुआ जो मेल सामान्यतया हमें देखने में नहीं आता है। उन्होंने मन में यह विचार किया कि जरा विज्ञान की दृष्टि से यह जानने की कोशिश करें कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। प्रयोगशाला में उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए, पशु की चमड़ी को लिया, मनुष्य की चमड़ी को लिया, कोई अंतर नहीं चमड़ी की दृष्टि से। जिन तत्वों से पशु की चमड़ी बनी वे ही तत्व मनुष्य की चमड़ी में भी विद्यमान। हड्डी को लिया, लहू को लिया, मांस को लिया, कहीं पर दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया, अंत में भेजे को लिया, ब्रेन को लिया, और भेजे में भी शारदा महोदय कोई विशेष अंतर पकड़ नहीं पाए, पर एक जगह अंतर उन्हें दिखाई दिया। वह अंतर यह था कि कुछ सेल्स जो मनुष्य के भेजे में हैं वे सक्रिय थे, और वही सेल्स पशु के भेजे में भी हैं पर वे सक्रिय नहीं है, और इस सक्रियता और निष्क्रियता के कारण मनुष्य और पशु का अंतर हो गया। फिर से इस बात को दोहरा दूं कि वे जो सेल्स हैं, जीवाणु कोश हैं, वे मनुष्य के भेजे में जैसे हैं वैसे ही पशु के भेजे में भी हैं, पर मनुष्य के भेजे में वे सेल्स सक्रिय हैं, जबकि पशु के भेजे में वे सेल्स सक्रिय नहीं है, और इसके कारण एक अंतर पड़ गया। तो उस अंतर को उन्होंने सुंदर भाषा में व्यक्त किया है। उनसे पूछा गया कि क्या पशु नहीं जानता? पशु जानता है। आपने देखा होगा ऐसे पशुओं को जिनको ज्ञान होता है। बिल्ली जानती है कि दूध कहां रखा है, उसे पीना जानती है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि कैसे पशु भी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। शायद यहां भी कभी अपने किसी प्रवचन या व्याख्यान में वह उदाहरण मैंने दिया हो, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, पर वह बड़ा रोचक उदाहरण है। जब हम लोगों ने रायपुर का आश्रम बनाया, उस समय तो पैसा था नहीं, तो वहां पर हमने पहले बगीचा लगाया, फुलवारी लगाई और एक गेट बनाया, पर वह गेट लोगों के द्वारा खोल दिया जाता था। कोई गाड़ी आई तो गेट खुला रह गया, पशु भीतर गए और जो बगीचा लगाया है उसको चर गए। हर समय रखवाली भी नहीं की जा सकती थी। फिर हम लोगों ने हाथ से ही लिख करके एक सुंदर सा बोर्ड टांगा। सुंदर सा बोर्ड यह कि जितनी अच्छी लिखाई हो सकती है हाथ से ही लिखा गया। कहा कि कृपया फाटक को खुला मत रखें। पर आप जानते हैं हमारी एक विशेष प्रवृत्ति होती है हम भारतीयों की, कि जैसा कहा गया है उसका उल्टा करते हैं। तो गेट खुला ही रहता था, बंद कोई करता नहीं था। तो सब तो बगीचे में जो कुछ हो रहा है, फुलवारी है, पशुओं के द्वारा चल ली जाती थी। हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि एक छोटा विकेट गेट बना दीजिए ताकि साइकिल वाले और पैदल तो उसके माध्यम से आ जाएं, बड़ा गेट ना खुले। ठीक है, एक छोटा गेट बनाया, अपनी समझ से उसको ऐसा बनाया कि बाहर से भीतर आने पर व्यक्ति उसको अपनी तरफ खींचेगा, अंदर चला जाए उसको छोड़ दे, फिर भी अपने वजन से बंद हो जाएगा। जिस दिन वह बना तो वैसी ही कुछ खुशी हुई जैसे आर्किमिडीज को हुई होगी जब वह यूरेका यूरेका कहकर के दौड़ा था नंगा। हमने कहा कि बहुत फतह हो गई। कुछ दिन तो बहुत आराम में बीते, पर एक दिन हम क्या देखते हैं कि एक लाल रंग की गाय भीतर घुस आई है, चल रही है। उसको तो भगाया, पर सोचने लगे कि आखिर गाय भीतर कैसे आई, वह तो खोलना जानती नहीं दरवाजे को। सोचा कि यह जो गाय का मालिक है उसी ने दरवाजे को खोल दिया होगा, विकेट गेट को गाय को भीतर घुसा दिया होगा, क्योंकि यह भी हमारे रक्त में है। दूध तो गाय का हमें मिले पर चारा हमारा मत खाए, इस वृत्ति से आप परिचित होंगे। इसीलिए गायों को हम छोड़ देते हैं और गाय जहां जाए मुंह मारती है, किसी के घर में, बाजार में, भले उसको डंडे पड़ते हैं फिर मारती है। शाम के समय चूंकि आप उसे चूनी भूसी देते हैं आपके घर आकर के खड़ी हो जाती है, आप उसे खिला देते हैं, दूध दूह लेते हैं। हमने सोचा कि ऐसा ही इस गाय का मालिक भी होगा। एक दिन तो हम लोग हैरान हो गए, चार पांच बार उस गाय को भगाना पड़ा, उसके मालिक को बुलाया, जांच पड़ताल की कि उसका मालिक कौन हो सकता है। मालिक को खूब डांटा, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, आश्रम को अगर दे नहीं सकते हैं तो आश्रम का तो इस प्रकार कुछ नष्ट नहीं करेंगे। सच मानिए हम गाय को अंदर नहीं ठेलते हैं, तो फिर आखिर तुम्हारी गाय कैसे आ जाती है। कहा महाराज हमको कुछ नहीं मालूम, क्या तुम्हारी गाय जादू जानती है जो घुस करके आ जाती है। हमें विश्वास नहीं हुआ। एक दिन और उसे सात आठ बार दिन में भगाना पड़ा। हमें लगा कि कोई होगा दुष्ट लड़का, वही यह करता होगा। हमने कहा कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा छिप करके तो देखो, दो तीन घंटे तुम्हें छिप करके बैठने पड़ेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि कौन दुष्टता करता है। बैठे रहे, ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ा, गाय को भगा दिया था। क्या देखते हैं कि जैसे छिप करके देख रहे हैं, कोई पैदल आता है तो गाय में कोई हलचल नहीं, वह बाहर खड़ी है। पहले तो दूर तक भगाया, फिर जिसके बाद भगाने वाला भीतर आ गया, गाय भी धीरे धीरे आकर के गेट के पास खड़ी हो गई। पैदल कोई गया, गाय में हलचल नहीं। पर साइकिल वाला जो ही आया और साइकिल से उतरा, गाय में हलचल शुरू हो गई। साइकिल वाला साइकिल लेकर के गया, विकेट गेट को एक हाथ से यूं खोला और साइकिल को भीतर ठेलते हुए अंदर जाने लगा, तो उस गाय ने साइकिल के पिछले चक्के में अपना सिर यूं कर दिया ताकि गेट बंद मत हो, और ऐसे वह अंदर घुस आई। देख करके हम हैरत में पड़ गए। आखिर पशु के भी बुद्धि है, पशु भी बुद्धि का उपयोग करना जानता है, तो आखिर अंतर हुआ कहां? जो प्रश्न विचारणीय था कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर, उसका जो उत्तर दिया गया कि पशु के बुद्धि नहीं होती जबकि मनुष्य के बुद्धि होती है, यह उत्तर तो गलत साबित हो गया। पशु के भी बुद्धि होती है, पशु भी जानता है। तो इसी अंतर को शारदा महोदय व्यक्त करते हुए कहते हैं अपनी सुंदर भाषा में, एन एनिमल नोज एंड ए मैन नोज, बट एन एनिमल डज नॉट नो दैट ही नोज व्हाइल ए मैन नोज दैट ही नोज। ये दोनों का अंतर है। पशु भी जानता है और मनुष्य भी जानता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है, जबकि मनुष्य यह जानता है कि वह जानता है। बात गोल गोल लगे पर बहुत सरल है। पशु को ज्ञान होता है पर पशु को अपने ज्ञान का बोध नहीं होता है कि मैं जान रहा हूं, यह बोध पशु को नहीं है। जबकि मनुष्य जानता है और मनुष्य को अपने ज्ञान का बोध होता है, मैं जान रहा हूं, जानने की प्रक्रिया का बोध, यही बोध मनुष्य को पशु से पृथक कर देता है। इसीलिए हमने कहा कि मनुष्य वह है जो मनन करता है। शारदा महोदय आगे चलकर के लिखते हैं, मनुष्य क्या कर सकता है? ही कैन कोऑर्डिनेट द फैकल्टीज ऑफ हिज माइंड। मनुष्य अपने मन की सारी वृत्तियों को सुसंबद्ध कर सकता है, श्रृंखलाबद्ध कर सकता है, और अंत में वे निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने आप से एक प्रश्न करता है जो पशु कभी भी नहीं कर सकता। मनुष्य प्रश्न करता है कि मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, यह पशु कभी अपने से प्रश्न नहीं कर सकता, क्षमता ही नहीं है। जवानी के दिनों में जब हमारा खून गर्म होता है, जिस समय हम आकाश के सितारों को पकड़ लेने की क्षमता का अनुभव करते हैं, ऐसे दिनों में भले ही हमारे मन में यह प्रश्न न जागे कि हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है, पर जब जीवन के घात प्रतिघात हमें लगते हैं तब हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि कोई शक्ति है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं, जब दुनिया की गर्माहट हमारे लिए शीतलता में बदल जाती है, जब आंखों की रोशनी धुंध पड़ती है, जिनको हम अपना जन कहते हैं वे हमें छोड़ करके दूर चले जाते हैं, जीवन की संध्या में हम बैठ करके बिसूलते हैं कि आखिर हमें क्या मिला, आखिर हमें क्या पाना है, आखिर हमें कहां जाना है, और इस जीवन का मतलब भी क्या है। किसी को 100 साल की जिंदगी मिली, कोई 50 साल का होकर के चला जाता है, तो मन में प्रश्न उठता है कि मनुष्य की जीवन गाथा क्या इतनी ही है कि एक जिंदगी हमें मिले। अब उस जिंदगी की कहानी शुरू होती है और शायद 100 साल तक वह कहानी चलती है, फिर कहानी मिट जाती है। तो यह जो 100 साल का जीवन मुझे मिला, क्या यही सब कुछ है? मैं कौन हूं? जीवन का तात्पर्य क्या है? ये जो प्रश्न मन में उठते हैं, ये मनुष्य के मन में उठते हैं। पशु के मन में ये प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकते। उसके मन में प्रश्न उठे ऐसा यंत्र उसके पास नहीं है। इसीलिए कहा गया शारदा महोदय के द्वारा, मनुष्य और पशु का अंततो गत्वा अंतर यह हुआ कि मनुष्य अपने आप से प्रश्न पूछ सकता है, पशु नहीं पूछ सकता। पशु कभी अपने आप से नहीं पूछता कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, जबकि मनुष्य अपने आप से कभी न कभी जरूर पूछता है मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। यह अंतर है मनुष्य और पशु का। तो हम कह रहे थे यह जो है जीवन दर्शन की बात, तो मनुष्य इस जीवन दर्शन की बात को लेकर के ही तो आगे बढ़ता है, मनन करता है। आखिर क्या जीवन में कोई दर्शन है, या जैसा मिला वैसे जी लूं? सोचने के लिए प्रेरित करने वाला यह प्रश्न। वैसे तो प्रश्न बड़े अजीबो गरीब होते हैं। यह भी प्रश्न अजीबो गरीब लगता है कि कोई पूछे कि भाई जीवन का प्रश्न, कि पूछे जीवन का लक्ष्य, यह तो अजीबो गरीब ही है। पर यह प्रश्न बड़ा वैज्ञानिक है। तो उपनिषदों के भीतर में इसी प्रश्न को तरह तरह से पूछा गया है। तो जब हम उपनिषदों के जीवन दर्शन पर विचार करते हैं, तो पहले तो जीवन के दर्शन पर ही विचार करें कि जीवन में कोई दर्शन होता है या नहीं, या यूं कहें कि जीवन में कोई दर्शन होना चाहिए या नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, इट्स नॉट ए चॉइस बिटवीन फिलॉसफी एंड नो फिलॉसफी, इट्स ए चॉइस बिटवीन राइट फिलॉसफी एंड रॉन्ग फिलॉसफी। आप यह चुनाव नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में दर्शन हो या जीवन में दर्शन ना हो। जीवन में दर्शन तो हो रहा ही, आप मनुष्य हैं इसलिए जीवन में कोई ना कोई दर्शन रख करके ही चलेंगे, नहीं तो जीवन आपके लिए वृथा है। आप फिर पशु के समान हैं। जिस मनुष्य के जीवन में कोई दर्शन नहीं वह पशु ही है, भले दो टांगों पर चलता है, भले मनुष्य के समान व्यवहार करता है, पर वस्तुतः वह पशु ही है जिसके जीवन में कोई दर्शन न हो। तो जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि प्रश्न मानो दर्शन और नहीं दर्शन का चुनाव नहीं, बल्कि सही दर्शन और गलत दर्शन के चुनाव का है, कि हमारा दर्शन सही हो या हमारा दर्शन कैसा हो, जो दर्शन लेकर के मैं चलता हूं वह ठीक है या गलत है, चुनाव इसका है। तो यह जो जीवन दर्शन की बात है, उपनिषदों ने इस पर बहुत चिंतन किया, और चिंतन करते हुए कुछ प्रश्नों को हमारे समक्ष रखा। इन प्रश्नों पर तुम क्या विचार करते हो? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह जो जीवन मुझे मिला है, यह जीवन वस्तुतः क्या है? जो विराट जगत में अपने सामने देखता हूं उससे मेरे जीवन का कोई संबंध है या नहीं है? क्या इस जीवन के पीछे कोई चैतन्यात्मक सत्ता है? उस सत्ता के साथ मेरा संबंध क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो इस जीवन दर्शन के तहत उठते हैं, और इन प्रश्नों का सुलझाव बहुत जरूरी है अगर हम जीवन में सही दर्शन चाहते हैं। तो यहां पर उपनिषदों ने हमें यही मदद की है। वे चाहते हैं कि हम सही दर्शन लेकर के चलें। आप देखेंगे ऐसे ये उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। ये उपनिषद क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। उपनिषदों का जीवन दर्शन तो हमने कहा, पर ये उपनिषद वस्तुतः हैं क्या, कहां से हमें प्राप्त होते हैं? तो इसका एक पंक्ति में उत्तर दें और कहें कि ये वेदों से हमें प्राप्त होते हैं। वेदों से प्राप्त होते हैं, क्या मतलब है वेदों से? इसका मतलब यह है कि वेद जो हैं, ये हमारे सनातन धर्म का आधार, जिसको विश्व ने हिंदू धर्म कहकर के पुकारा है, उस हिंदू धर्म का आधार है ये वेद। वेदों को हमने सनातन कहा है, शाश्वत कहा है, ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि वेद रूपी ग्रंथ में जो अनुभूतियां संचित हैं, उन अनुभूतियों के रूप में वे शाश्वत और सनातन है। जिन सत्यों का उद्घाटन ऋषियों ने किया वे सत्य वहां पर शब्दबद्ध होकर के लिखे हुए हैं। मैं जैसे उन शब्दों को रट लूं तो क्या मैं सत्यों का ज्ञाता हो जाता हूं? सैद्धांतिक दृष्टि से हां, व्यावहारिक दृष्टि से नहीं। क्या मतलब है कि वेदों में जो सूत्र लिखे हैं, वेदों में जो शब्द राशि है, तो शब्द राशि को मैंने जान लिया तो इसका मतलब क्या जीवन के सत्यों को मैंने जान नहीं लिया? तो यह कहा गया कि यह जानकारी केवल शाब्दिक है, यह जानकारी केवल तोते की जानकारी है। जैसे तोते को हम रटा दें और तोता कोई बात कह दे, तो तोता अगर कोई बात कहेगा तो तोते की वह जानकारी है क्या? कहेंगे हां जानकारी है, शाब्दिक जानकारी है। मान लीजिए तोते को आपने गायत्री मंत्र रटा दिया और वह चीख चीख करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, तो तोते को यह जो गायत्री मंत्र की जानकारी है वह जानकारी क्या किसी काम की है? नहीं है, क्योंकि वह केवल शाब्दिक जानकारी है। तो इसी प्रकार वेद ग्रंथ में जो ऋचाएं आई हैं उनको मात्र मैं पढ़ लूं, रट लूं और भाषण में उनका प्रयोग करूं, तो यह जो जानकारी है यदि वह अनुभूति में नहीं उतरी है तो मात्र शाब्दिक जानकारी है। यह ऐसा कहा गया है। तो वेद कहने से मात्र शब्द राशि नहीं, बल्कि शब्द राशि के पीछे जो अनुभूति छिपी है वह। जैसे एक उदाहरण मुंडक उपनिषद में पाते हैं, शौनक महागृहस्थ हैं, महाशाल हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठा और वे उस प्रश्न को लेकर के जाते हैं अंगिरा ऋषि के पास। मन में प्रश्न मथित हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और जो कुछ जानने का है वह तो इतना विराट कि छोटे से जीवन में सब कुछ कैसे जाना जा सकता है। तो वे अपना प्रश्न लेकर के अंगिरा के पास गए और पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। भगवन, मैं किसको जान लूं ताकि सब कुछ का जानना हो जाए? ऐसा लगा शौनक को कोई कोई सूत्र है क्या जिसको जान लेने से सब कुछ का जानना हो जाए, और इससे परिचालित होकर के वे प्रश्न करते हैं, यथा एकस्मिन मृत्पिंडे विज्ञाते सर्वम मृण्मयम् विज्ञातम स्यात्। जैसे एक मिट्टी का लोंदा जान लिया जाए तो जो भी मिट्टी का बना है सबको जान लिया जाता है, इसी प्रकार ऐसा कुछ ज्ञान है क्या जिसको पा लेने पर जो कुछ भी जानने का है वह हस्तगत हो जाता है? क्या कहा अंगिरा ने उत्तर में, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच। सुनो शौनक, दो विद्याएं जाननी पड़ती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं शौनक, जो ब्रह्मविद लोग हैं वे ही ऐसा कहते हैं। परा और अपरा ये दो विद्याएं। भगवन, अपरा क्या है? उत्तर दिया अंगिरा ने, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। चार वेद, चारों वेदों को समझने के लिए छह वेदांग, चार वेद हमारी परंपरा में, ऋक यजुः साम और अथर्व, और इन चारों को समझने के लिए छह वेदांग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ऐसी परंपरा है कि जब तक वेदांगों का ठीक ठीक अध्ययन और ज्ञान न हो तब तक वेदों का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो कहा गया कि इनको समझो, तो ये समझोगे तो क्या है, तत्र अपरा, यह सारी की सारी अपरा विद्या है। शौनक तो मानो आसमान से गिर पड़े, जिन वेदों से हमारा सांस्कृत हुआ है। वे वेद यदि अपरा विद्या के अंतर्गत आ गए तो फिर पराविद्या कौन सी है? समझ गए शौनक के अनबोले प्रश्न को अंगिरा ऋषि। उत्तर में मुस्कुरा करके कहते हैं, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है शौनक जिससे वह अक्षर तत्व अधिगम्यते अनुभूति में आता है।